आस्तिक ने जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ाया, अरुणिमा की दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। उसने कसकर सीट के दोनों हैंडल को पकड़ लिया था और उसकी आंखें सामने की तरफ थीं, लेकिन उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थीं। वो अपनी आंखें फाड़े हुए सामने का नज़ारा देख रही थी, जहां पर हेलीकॉप्टर धीरे धीरे हवा में ऊपर की तरफ उड़ रहा था। अरुणिमा ने अपनी संकुचित और घबराई हुई नज़रों से आस्तिक को देखा, लेकिन आस्तिक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। हालांकि वो बहुत शांत भाव में था, लेकिन अरुणिमा के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उसने आखिरकार हेलीकॉप्टर को एक फुल स्पीड के साथ हवा में ऊपर की तरफ उठा लिया और उसे आगे की तरफ फ्लाई करने लगा। अरुणिमा ने जब हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ देखा, तब जाकर उसकी जान में जान आई। उसने आस्तिक को हैरानी से देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के अरुणिमा को देख रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ एक हाथ से हेलीकॉप्टर के व्हील को हैंडल किया और दूसरे हाथ से उसके बालों को पीछे करते हुए कहा, क्या हुआ, डर लग रहा है? उसके छूने से अरुणिमा के चेहरे पर एक सुकून उतर आता है। उसने मुस्कुराते हुए जल्दी से नामे सर हिलाया और आस्तिक की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे होते हुए अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। सच में? ऐसा कहते हुए आस्तिक ने अपने दोनों हाथों से हेलीकॉप्टर की व्हील को छोड़ दिया और अपने दोनों हाथ सामने बांधते हुए उसने अरुणिमा को देखकर कहा, अभी डर नहीं लग रहा? अरुणिमा की आंखें एक पल के लिए बड़ी होती हैं और होंठ थोड़े से हिल जाते हैं, लेकिन जब उसने आस्तिक के चेहरे पर बेफिक्री देखी तो वो भी बेफिक्र हो गई। उसने भी अपने हाथ दोनों सामने बांधते हुए कहा, नहीं, मैंने कहा ना, अगर ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी उड़ान है तो मैं तुम्हारे साथ शौक से मरना चाहूँगी। आस्तिक हल्फा सा अरुणिमा की तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, ऐसे कैसे मरने की बात कह सकती हो तुम? जान, अभी तो हमने जीना भी शुरू नहीं किया है, मौत तो बहुत दूर की बात है। अरुणिमा के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। आस्तिक दोबारा व्हील को पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर आगे की दिशा में तेज बीच से भागने लगता है। अरुणिमा गुजरते हुए बादलों को अपनी आंखों के सामने देख रही थी। धीरे धीरे शाम से रात का मंजर आ जाता है और आसमान के ऊपर उसे छोटे छोटे से टिमटिमाते हुए तारे नजर आने लगते हैं। भले ही वो बहुत कम संख्या में थे, लेकिन वो इतने खूबसूरत लग रहे थे कि अरुणिमा को लग रहा था कि वो उसे हेलीकॉप्टर से उन तारों तक पहुंच जाएगी और उन्हें पकड़ लेगी। उसे इतना खुश देखकर आस्तिक ने कहा, तुम्हें तारे देखना पसंद है ना? अरुणिमा ने खुशी से हामी हिलाया और फिर आस्तिक से कहा, मुझसे क्या पूछ रहे हो, तुम्हें भी तो तारे देखना पसंद है। आस्तिक के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। अरुणिमा को आज भी उसकी पसंद और नापसंद के बारे में पता है, लेकिन फिर उसने हैरानी से अरुणिमा को देखते हुए कहा, पर तुम्हें कैसे पता कि मुझे तारे देखना पसंद है? अरुणिमा ने तुरंत कहा, जब हम साथ में रहते थे तो मैं तुम्हें देखती थी। अक्सर उठकर तुम बालकनी में चले जाते थे और घंटों बालकनी में खड़े होकर तारों को घूरा करते थे। वैसे तब मैं तुमसे डरती थी, इसलिए कभी हिम्मत नहीं की। पर ये तारे देखने का शौक तुम्हें कब से हुआ था? आस्तिक ने कहा, जब मैं बोर्डिंग में था तब अक्सर मैं वहां पर तारे देखा करता था। मेरा गुस्सेल स्वभाव मुझे कभी किसी के साथ मिलजुल कर रहने ही नहीं देता था, इसलिए एक दिन मैंने वहां के एक लड़के को पीट दिया। वैसे वो मरा नहीं था, पर उसकी हालत अधमरी हो गई थी, और जब बोर्डिंग के लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन लोगों ने इस बात को ज्यादा न बढ़ने के लिए कहा, क्योंकि मैं पुष्कर रायचंद का बेटा हूँ। मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं होता, लेकिन शायद उस लड़के को बहुत कुछ हो सकता था, इसलिए उसके परिवार ने कोई एक्शन नहीं लिया। पर मुझे सज़ा देना भी ज़रूरी था, इसलिए बोर्डिंग के प्रिंसिपल ने मुझे छत पर अकेले ठंड में खड़ा रहने की सज़ा दी थी। अब ठंड में अकेले छत पर खड़ा रहकर मैं क्या ही करता, तो मैंने तारों को देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने सोचा, क्यों ना इन्हें गिनना शुरू कर दूं। शुरू शुरू में वो थोड़ा अटपटा लगा और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, यहाँ तक कि तारे गिनने में परेशानी भी हो रही थी। पर कुछ दिनों बाद मुझे इसकी आदत हो गई। उसके बाद मैं बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगता था, और फिर तारे देखना, उन्हें गिनना या फिर वे कितने अनगिनत हैं, ये सोचना मेरे लिए सज़ा नहीं बल्कि मज़ा बन गया था। और फिर जब मेरी सज़ा ख़त्म हुई तब मुझे पता चला कि मुझे इसकी आदत हो गई है। उसके बाद मैं बेवजह ही छत पर चला जाया करता था और तारे गिनता था। अरुणिमा उसकी बात सुनकर एकदम से हैरान हो गई। उसने बोला, तो जब तुम बोर्डिंग में थे तो तुम कितने साल के थे? यही कोई 7 साल का। आस्तिक ने जब ये कहा तो अरुणिमा की आंखें एकदम बड़ी हो गईं। उसने हैरानी से कहा, तुम इतनी छोटी उम्र से अपने पेरेंट्स से अलग रहते हो? आस्तिक ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, तभी तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। माँ बाप से दूर रहकर बच्चों के दिल में माँ बाप के लिए जो लगाव होता है वो कम हो जाता है। कहना गलत होगा कि वो खत्म हो जाता है, लेकिन एक वक्त के बाद उनके लिए जो मोहमाया होती है उसका कोई मतलब नहीं रहता है। अरुणिमा ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं आज भी अपने पापा से प्यार करती हूँ। आस्तिक हंसते हुए बोला, वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पापा कभी तुमसे दूर हुए ही नहीं थे। वो अक्सर तुमसे कनेक्ट रहा करते थे और तुमसे मिलते रहा करते थे, जिसकी वजह से तुम्हारा उनके साथ लगाव कभी खत्म ही नहीं हुआ था। मैं बात मेरी कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरे माँ बाप ने मेरी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा और ना ही कभी मेरे अच्छे और बुरे दिनों में मेरा साथ दिया था। ऐसे में मेरा उनके प्रति लगाव खत्म होना स्वाभाविक था। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को हेलीकॉप्टर उड़ाता हुआ देख रही थी। 7 साल की उम्र से वो बिल्कुल अकेला हो गया था, ऊपर से माफिया की ट्रेनिंग और इतना सब कुछ उसने अकेले बर्दाश्त किया। पर तभी अरुणिमा के दिमाग में एक बात आती है और वो तुरंत आस्तिक की तरफ देखते हुए हैरानी से कहती है, आस्तिक, तुम्हारा माफिया बनने का सपना, तुम्हारी कुर्सी, माफिया में तुम्हारी जगह, वो तो है ना? तुमने इसी के लिए तो बचपन से मेहनत की थी और तुम यही बनना चाहती थे। इसी के लिए तो मिस्टर रायचंद तुम्हें मुझसे अलग कर रहे थे। तो अब तो तुम माफिया बन गए होगे ना? सच बताना, क्या तुम्हें वो पोजीशन मिली और तुम माफिया लीडर बन गए? उसकी बात सुनकर आस्तिक हंसने लगता है। उसे पूरे हेलीकॉप्टर में हंसने की आवाज आ रही थी। आस्तिक हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हुए ऐसे हंस रहा था जैसे कि कोई मस्त जोक सुना है। उसने अरुणिमा की तरफ देखते हुए कहा, अरुणिमा, तुम्हें एक एक करके चीज याद आती है क्या? पिछले 1 साल में लगता है तुम्हारी याददाश्त काफी कमजोर हो गई है। डोंट वरी, जैसे ही हम लैंड करेंगे वैसे ही मैं तुम्हें बादाम खिलाना शुरू करूंगा। अरुणिमा ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, मजाक मत करो, मैं यहाँ पर सीरियस हूँ और तुम इसे मजाक सोच रहे हो। मैंने देखा था, माफिया बनने के लिए तुमने बचपन से ही मेहनत की थी और इसी के लिए तो तुमने मुझसे शादी भी की थी। सच कहूँ तो तुमसे अलग होने का मेरा भी यही रीजन था कि मैं चाहती थी तुम्हें वो जगह और वो पोजीशन मिले। इसके लिए तुमने इतनी मेहनत की थी, मुझे बताओ ना, कहो कि तुमने वो सब कुछ हासिल कर लिया है। आस्तिक अरुणिमा के चेहरे पर अपने लिए फिक्र और जज्बात देख सकता था। उसने प्यार से अरुणिमा के गालों पर अपना हाथ रखा और अपने अंगूठे से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, मुझे बस तुम्हें हासिल करना था। अब जबकि मैंने तुम्हें हासिल कर लिया है तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं करना है। अरुणिमा उसकी आंखों में देख रही थी और एक विश्वास के साथ उसने नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम अपने माफिया बनने के सपने को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो।
आस्तिक हंसते हुए बोला, अरुणिमा, जब मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ तो मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। और ये सच है कि मैं अब किसी माफिया संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और ना ही किसी कार्टेल में मेरा नाम है। अब मैं एक सिंपल सा सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ और मेरी कंपनी हेलीकॉप्टर के पार्ट्स बनाती है। अरुणिमा का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो हैरानी से आस्तिक को देखते हुए कहती है, इसका मतलब इस हेलीकॉप्टर को भी तुम्हारी कंपनी ने बनाया है? आस्तिक ने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए अरुणिमा को जवाब देता है, हाँ, इस हेलीकॉप्टर में भी लगे हुए पार्ट्स हमारी ही कंपनी के हैं और वहीं से मैंने हेलीकॉप्टर चलाना भी सीखा है। तुम यकीन नहीं करोगी, एक वक्त पर माफिया का सरगना बनने का सपना देखने वाला ये इंसान आज देश के जवानों के लिए हेलीकॉप्टर डिजाइन करता है और इंडियन एयरफोर्स में उड़ने वाले कई फाइटर जेट पर लगने वाले पार्ट्स हमारी कंपनी से बने हैं।